ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸವಿಸಾಸಿ ಬೋಲಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಆಜ್ ಕಿ ಸುಬೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಕ್ಷಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಕನ್ನೆ ಪಹಲೆ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಸೇ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೇ ಎಸ್ಕಾನ್ ಜೂ ಮೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ವರಿಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವ ಹೇ ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಸೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಕರೆಂಗೆ ಕಿ ಆಪ್ ಲೋ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೇ ಕುಛ್ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೆ ಆಜ್. ತೋ ಆಪ್ ಸಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೀಜಿಯೇ, ಬ್ಲೆಸ್ ಕೀಜಿಯೇ. ತೋ ಮೇ 15 ಸಾಲ ಪಹಲೆ ಆಯಾ ಥಾ ಮೇ ಎಸ್ಕಾನ್ ಜೂ ಹೂ ತೋ ಏಕ ದಿನ ಕೇ ಲಿಯೇ ಆಯಾ ಥಾ ತಬ್ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆಜ್ ಆಯಾ ಹೂ ತೋ ಇತನೆ ಸಾರೇ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದೇಖ ಕೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಚ್ಛಾ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಾಹಿಯೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 35वें अध्याय का पहले श्लोक पर चर्चा करेंगे. तो श्लोक सामने स्क्रीन पर है, आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं. श्री शुका उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते, गोप्यः कृष्णे वनं याते, ತಂ ಅನುದೃತ ಚೇತಸಃ, ತಂ ಅನುದೃತ ಚೇತಸಃ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಗಾಯಂತ್ಯೋ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಗಾಯಂತ್ಯೋ ನಿನ್ಯುರ್ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾ, ನಿನ್ಯುರ್ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾ. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಗೋಪ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣೇ ವನಂ ಯಾತೆ, ತಂ ಅನುದೃತ ಚೇತಸಃ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಃ ಪ್ರಗಾಯಂತ್ಯೋ, ನಿನ್ಯುರ್ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾ. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಗೋಪ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣೇ ವನಂ ಯಾತೆ, ತಂ ಅನುದೃತ ಚೇತಸಃ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಗಾಯಂತ್ಯೋ, ನಿನ್ಯುರ್ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾ. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಗೋಪ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣೇ ವನಂ ಯಾತೆ, ತದ್ ಅನುದೃತ ಚೇತಸಃ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಗಾಯಂತ್ಯೋ, ನಿನ್ಯುರ್ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾನ್. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಗೋಪ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣೇ ವನಂ ಯಾತೆ, ತನ್ ಅನುದ್ಭುತ ಚೇತಸಃ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಃ ಪ್ರಗಾಯಂತ್ಯೋ, ನಿನ್ಯುರ್ದುಃಖೇನ ವಾಸರಾನ್. ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಗೋಪ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣೇ ವನಂ ಯಾತೆ, ಅನುದೃತ ಚೇತಸಃ कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निर्दुःखेन वासना। श्रीशुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तम् अनुद्भुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य, शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोप्यः गोपियां कृष्णे कृष्ण के वनम वन को याते जाने पर तमा उसके अनुद्भुता पीछा करते चेतसः जिनके मन कृष्ण लीला कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रगायन्त्यः जोर जोर से गाती हुई निन्युः बिताया दुखेन दुख के साथ वासरान दिन। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थी। तात्पर्य सुनिए। यद्यपि गोपियां रात्रि के समय रास नृत्य में कृष्ण के प्रत्यक्ष संग का आनंद लेती थी किंतु दिन में कृष्ण अपना सामान्य कार्य करने में जंगल में गौवें चराने में लगे रहते थे। उस समय गोपियों के मन उनके साथ चले जाते किंतु उन बेचारियों को गांव में रहकर अपने गृह कार्य करने पड़ते थे। इस तरह वियोग की पीड़ा सहते हुए वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करती रहती थी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। श्री कृष्ण वृंदावन के प्राण है, वृंदावन की लाइफ है। ये भी हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भक्तों की लाइफ है, भक्तों का जीवन है। भक्त अपने जीवन का एक क्षण भी कृष्ण के बिना व्यतीत नहीं कर सकते। भक्तों के जीवन में अगर एक क्षण भी माइनस कृष्ण हो, मतलब किसी समय कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण का चिंतन ना हो, तो ये समय उनके लिए बिल्कुल नारकीय है। इसलिए भक्त जो है सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। और जो ब्रजवासी हैं उनके कहने, उनके बारे में कहना बहुत ही कठिन है कि उनका जो कृष्ण है, मतलब उनका जो चिंतन है कृष्ण के प्रति, वो कितना प्रगाढ़ है। बताया जाता है कि ब्रज में जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तो पूरा दिन कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ही हैं। और जब खेल कर गोल धूली के समय कृष्ण अपने घर वापस जाते हैं और यशोदा माता कृष्ण को स्नान करवाती हैं, कृष्ण को भूख लगी होती है, कृष्ण को खाने के लिए देती हैं, और इसके बाद कृष्ण विश्राम करने लगते हैं। जैसे ही रात्रि के समय कृष्ण विश्राम करने लगते हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। यशोदा माता सोचती है रात को कौन आए हैं। दरवाजा खोल के देखती है, देखती है मधुमंगल खड़े हैं। कहती मधुमंगल ये कौन सा समय है। कहते मैया कृष्णा कहाँ है, हमें खेलना है। मैया कहती है बहुत लेट हो गया है, ये सोने का समय है, कृष्ण सो रहे हैं, आप भी जाओ और सो जाओ। ठीक है। अब यशोदा माता जाके लेटी होती कि दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब यशोदा मैया खोलने के लिए जाती है दरवाजा तो देखते हैं श्रीधाम सामने खड़े हैं। श्रीधाम पूछते कृष्णा कहाँ है मैया, हमें खेलना है। मैया कहती है बहुत रात हो गई, अब जाओ सो जाओ, कल सुबह खेलना। तो ऐसे ही रात्रि भर मधुमंगल, श्रीदाम, सुबला, एक एक करके सारे ग्वाल बाल आते हैं और रात भर सोते नहीं है, कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। हालांकि देखिए पूरे दिन कृष्ण के साथ हैं, पूरा दिन कृष्ण के साथ व्यतीत किया, लेकिन उनको लगता है रात्रि बिना कृष्ण के कितना अधूरा है। अच्छा, अब क्योंकि पूरे रात भर तो सोए नहीं, दरवाजा खटखटाते रहे, कृष्ण का चिंतन करते रहे, अब सुबह जब गोचारण का समय आता है तो सारे ग्वाल बाल सो रहे होते हैं। अब कृष्ण जाते हैं उनको उठाने के लिए घर घर जाकर, और यही शास्त्रों में कह रहे हैं साधु नाम हृदयम महियम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य तेना जान आती ना तो हम तेभ्यो मना जपी। भगवान कह रहे हैं साधु मेरा हृदय है, दे आर माय हार्ट, और मैं साधुओं का हृदय हूं। मैं भक्तों के अलावा, भगवान कह रहे हैं, किसी को जानता ही नहीं हूं, क्योंकि भक्त भी मेरे अलावा किसी को जानते नहीं है। तभी श्री कृष्ण कहीं पर भी क्यों नहीं होते थे, द्वारका में भी क्यों नहीं थे, पर चिंतन किनका करते थे, श्रीमती राधा रानी का, गोपियों का चिंतन करते थे। सोते हुए रात को गोपी गोपी राधा राधा ये चिंतन करते रहते थे। एक दिन रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी, इन सब ने ना एक गैंग बना लिया। कहती है कृष्ण से पूछते हैं भैया ऐसा क्या खास था गोपियों में, हम सुंदर नहीं है क्या, हम भी तो सुंदर हैं, ऐसा क्या गोपियों में खास था कि जो कृष्ण है हमेशा गोपियों का, राधा रानी का चिंतन करते हैं। सब एक ग्रुप बना के, गैंग बना के कृष्ण के पास पहुंचती हैं। कहती है वो मिस्ट्री क्या है आपको बतानी पड़ेगी, है ना, हम जानना चाहते हैं क्या रीजन है आप हमेशा चिंतन करते रहते हैं, गोपियों का चिंतन करते हैं, राधा रानी का चिंतन करते हैं। कृष्ण कहते हैं आप लोग नहीं समझोगे, मैं जब वृंदावन में वंशी वट पर बांसुरी बजाता था तो गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास रात्रि के समय भागती चली आती थी। वे किसी की चिंता नहीं करती थी, उनको सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही होती थी, मेरी वंशी की आवाज, और उसको फॉलो करते हुए वो मेरे पास आ जाती थी। रुक्मिणी देवी कहती हैं, बाकी पटरानियां कहती हैं कि इसमें मुश्किल क्या है, क्या हमारी द्वारका में जंगल नहीं है, हमारी द्वारका में भी बहुत सारे जंगल हैं, ऐसा करते हैं कि हम भी ये लीला करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, डन, डील फिक्स हो गई। एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया जाता है जिस दिन कृष्ण द्वारका में एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसरी बजाएंगे, और उस समय द्वारका की जितनी पटरानियां हैं वो रात्रि के समय भागती हुई आएंगी। कहते हैं चलो ठीक है, डील हो गया। अब क्या कर रहे हैं, सब डेज काउंट कर रहे हैं, अच्छा वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। अब जब वो दिन आता है, कृष्ण रात्रि के समय बंसरी बजाते हैं और पटरानियां जो बिल्कुल सज धज के तैयार बैठी है कि अब हमें भागना है, बस कृष्ण की ओर जाना है हमारे को। प्रभुपाद ने एक नाम पुस्तक का नाम रखा ना, कृष्ण की ओर, तो उनको भी था कि बस हमें कृष्ण की ओर जाना है अब। तो सब अपने घरों से बाहर निकली, पहली रानी घर से बाहर निकली, देखती है कि घर के जो ब्राह्मण थे जो कुल के वो सामने खड़े हैं। कहती हो इनके सामने मैं जाऊंगी रात को, मेरे से पूछेंगे कहां जा रहे हो, मैं बोलूंगी जंगल में नाचने जा रहे हैं ना, तो ये भी हंसेंगे मेरे ऊपर कि घर में नाच लो भाई, जंगल में क्यों जाना नाचने के लिए। तो कहती है अभी रुक जाती हूं, जब ये चले जाएंगे ना ब्राह्मण फिर जाऊंगी। दूसरी रानी निकलने लगी, वो क्या देखते हैं कि माता पिता जो हैं सामने खड़े हैं। कहते हैं नहीं नहीं ये सही समय नहीं है जाने का, मुझे क्या क्या बोलूंगी मैं कि मैं कहां जा रही हूं। ऐसे एक एक करके रानियां निकलती रही और देख रहे हैं कि कोई ना कोई बाधा सामने आती जा रही है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल सामने आ रहा है, और वो सोच रहे हैं कि अभी नहीं, थोड़े समय के लिए टाल देते हैं, थोड़े समय के बाद जाऊंगी जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जब ये चले जाएंगे। लेकिन ना वो जाते हैं कभी, और ना ये रानियां जो हैं कभी जंगल में पहुंच पाती हैं। और कृष्ण फिर रानियों से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उसी प्रकार से हम भक्त भी जब भक्ति करने का कोई प्रण लेते हैं, कोई वॉ लेते हैं हम लोग ना, कार्तिक का महीने आने वाला है, हम सोचते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं किन किन चीजों में मेरी कमजोरी है, मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा, बस मुझे इन सब चीजों को इंप्रूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 हम जॉट डाउन करना शुरू करते हैं पॉइंट्स। अच्छा एक तरफ हम लिस्ट बना रहे होते हैं क्या क्या करना है, एक तरफ माया लिस्ट बना रही होती है, किसने बड़ी अच्छी लिस्ट बनाई है, इसका क्या क्या तोड़ना है, कैसे कैसे तोड़ना है, एक तरफ वो लिस्ट बना रही होती है। तो क्या जैसे ही हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ये हिंड्रेंस आती है, ये प्रॉब्लम्स आती है, और हम लोग उस समय बैठ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि कीबोर्ड के कॉर्नर में एक बटन होता है एस्केप का। अब जिन लोगों को कमांड्स नहीं आती ना वो हर चीज में क्या दबाते हैं, एस्केप, हर चीज में एस्केप। उसी प्रकार से हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम क्या कर देते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, समाधान निकाल। जैसे गंगा जी देखिए पर्वतों की चोटी से निकलती हैं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बड़े बड़े पर्वत आते हैं बीच में, गंगा जी रुक जाती हैं, कहते हैं अरे भाई इतना बड़ा पहाड़ सामने खड़ा है हम कैसे जा सकते हैं, नहीं नहीं रास्ता निकालती हैं, फिर दूसरा पहाड़ सामने आता है फिर रास्ता निकालती हैं। अगर व्यक्ति को उसका गोल क्लियर है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये रास्ता क्लियर करना बहुत जरूरी है। जय श्री श्री राधारास बिहारी जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। तो एक बार की बात है कि अर्जुन जो है वो भीम के साथ एक पंडाल में प्रसाद पा रहे थे, तो उस समय लाइट्स तो नहीं होती थी, दीपक जलते थे, बहुत तेज हवा आती है और सारे जो दिए थे वो बुझ जाते हैं। तो दिए जब बुझ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद सेवक आते हैं दिए जलाने के लिए, और वो क्या देखते हैं कि प्लेट्स में से जो अर्जुन और भीम जिसमें खा रहे थे, जैसे ही दिए जलते हैं वो देखते हैं प्लेट सारी खाली हो गई है, भीम सब खा चुके थे। तो अर्जुन भीम से पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया, अंधेरे में भी आपका निशाना नहीं चूका, वैसे तो हमारा भी नहीं चूकता, कहते हैं अंधेरे में भी आपका निशाना नहीं चूका। भीम कहते नहीं मैंने बहुत ही प्रैक्टिस की है इसको लेकर, मेरा अंधेरे में भी निशाना कभी चूकता नहीं है। उस दिन अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि यस मैं भी एक ऐसा धनुर्धर बनके दिखाऊंगा कि अंधेरे में भी अगर बाण छोड़ूंगा तो सही जगह पर आके लगेगा। तभी द्रोणाचार्य जी ने जब परीक्षा ली थी सभी की तो एक एक करके बुलाया उन्होंने, और टारगेट क्या था कि एक वृक्ष के ऊपर जिसमें हरे पत्तों से भरा हुआ है उस पर एक हरे रंग का तोता है और उसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो द्रोणाचार्य ने बुलाया, सबसे पहले पूछा कि युधिष्ठिर बताओ आपको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं गुरुदेव मुझे वृक्ष दिख रहा है, मुझे वृक्ष में बैठा तोता दिख रहा है और मुझे तोते की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं फेल, साइड हो जाऊं। फिर भीम को बुलाया, भीम आपको क्या दिख रहा है? कह रहे मुझे हरा वृक्ष दिख रहा है और उस पर बैठा तोता दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं 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 आउट। फिर दुर्योधन को बुलाया। अब ये दुर्योधन क्या स्वभाव से कपटी है ना? तो दुर्योधन से पूछा द्रोणाचार्य ने कि दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? कह रहा है गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आप ही दिख रहे हैं ना? वो सोचा था चापलूसी करके काम चल जाएगा। द्रोणाचार्य ने बोला नहीं 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 साइड हो जाओ। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन कहते हैं मुझे तोते की आंख दिख रही है। कहते हैं अच्छा अर्जुन और क्या दिख रहा है तुम्हें? कहते हैं गुरुदेव मुझे तोते की आंख दिख रही है। अच्छा और क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? कह रहे गुरुदेव मुझे तोते की आंख दिख रही है। तो जब तक किसी व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर नहीं है तब तक उसके लिए अपने लक्ष्य को पाना बहुत ही मुश्किल है। लक्ष्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इस प्रसंग में, इस श्लोक में यहां पर बता रहे हैं कि गोपियां जो पूरी रात्रि, जैसे ग्वाल बाल पूरी दिन भर क्या करते थे, कृष्ण के साथ खेलते थे और रात को कृष्ण का चिंतन करते थे। गोपियां पूरी रात्रि कृष्ण के साथ रास करती थी और दिन भर जब कृष्ण गायें चराने जाते थे तो कृष्ण का चिंतन करती थी, हमेशा मेडिटेट करती रहती थी कृष्ण के ऊपर। और श्रील प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य बताया जा रहा है कि इस विरह में वह हमेशा रहती थी, सेपरेशन में। तो मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई भी प्रेम है, जो लव है, वो समय के अनुसार घटता रहता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो चाहे वो किसी वस्तु के प्रति हो। लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, पहले दिन बड़ा प्रेम करते हैं उससे, कवर चढ़ा के रखेंगे, टायर्स पे चेन चढ़ाएंगे ना, ध्यान रखेंगे कोई कुत्ता भी उसके आसपास ना घूमे। फिर कुछ दिन बीतते रहते हैं तो फिर कवर हटना बंद शुरू हो जाता है, चेन हटनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके सब चीजें हट जाती हैं और अब उनका उसके प्रति प्रेम खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही संबंधों में भी यही है ना, मेटेरियल वर्ल्ड के जितने भी रिलेशन हैं ये क्या करते हैं, डिमिनिश करते हैं, कम होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लव है, जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है, ये पल पल क्या करता है, बढ़ता है। इसलिए हम क्या बताने चाहिए थे महापू, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। भौतिक जगत में तो लोग क्या है, 7 जन्म रहने के वादे करते हैं, तो 7 जन्म रहने के वादे तो कर लेते हैं, फिर विवाह के 2-4 दिन बाद लगता है कि 7 जन्म तो ज्यादा ही है ना, ये जन्म बहुत है। कुछ दिनों के बाद और अनुभूति होती है कि ये जन्म भी बहुत ज्यादा ही है ना, कुछ घंटे कुछ मिनट से ज्यादा इस व्यक्ति के साथ नहीं रहा जा सकता। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है ये प्रेम बढ़ने वाला है ना। तभी देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कह रहे भगवान की विरह में क्या है, एक मोमेंट जो है, एक क्षण, ये कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे 12 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। आंखों से क्या हो रहा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। जैसे कोई संसार में व्यक्ति कोई शरीर छोड़ देता है तो लोग उसके मरने पर रोते हैं ना, तो रोते भी रहेंगे और क्या करते रहेंगे, खाते भी रहेंगे। मरने पे जाओ, क्रिया पे जाते हैं लोग, वहां पर कहते हैं रो भी रहे हैं, आंसू भी निकल रहे हैं, साथ में पूछते हैं चाय है ना, बिस्किट नहीं है क्या इसके साथ ना? रो भी रहे हैं साथ में, और उनके आंसू भी क्या होते हैं, यहां से शुरू होते हैं, कईयों के तो अंदर ही खत्म हो जाते हैं, कईयों के यहां तक सूख जाते हैं। पर आध्यात्मिक जगत का प्रेम, आध्यात्मिक जगत के अश्रु ऐसे नहीं होते, प्रेममय अश्रु ऐसे नहीं है। जैसे इंजेक्शन होता है ना, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो डॉक्टर उससे पहले ना हल्का सा थोड़ा सा बाहर निकालता है उसको, तो जैसे वो पिचकारी से निकलती है ना, ऐसे अश्रु प्रवाह होते हैं, टॉरेंट्स ऑफ रेन। और क्या बता रहे हैं कि पूरा जो जगत है वो कैसे दिखाई पड़ता है, जैसे खाली हो गया, वैकेंट हो गया, खाली पूरा संसार, किसके बिना, कृष्ण की एब्सेंस में, कृष्ण के विरह में। तो हमारे आचार्य गण कृष्ण के विरह में, कृष्ण से सेपरेशन से रिलेटेड काफी चीजें, काफी कथाएं, काफी कंटेक्स्ट, काफी पॉइंट्स बता रहे हैं। विशेष रूप से बता रहे हैं कि देर आर 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ विप्रलंभा। भगवान से जो विरह है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो विरह है भगवान के साथ, उसे कहते हैं पूर्व राग। पूर्व राग का मतलब, पूर्व राग इज अ टाइप ऑफ लव इन सेपरेशन एक्सपीरियंस बिटवीन लवर्स हु हैव नॉट येट मेट। ये एक ऐसा प्रेम है प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ, जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन कभी मिले नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी इसका उदाहरण दे रहे हैं, रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, बल्कि साधु महात्मा नारद मुनि जब द्वारका से आते थे, रुक्मिणी जी से मिलते थे, तो कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे, बताते थे कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने गुणवान हैं, कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, कृष्ण कितने यशस्वी हैं। जब ये बातें सुनी रुक्मिणी जी ने, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण से प्रेम करने लगी और ये निश्चय कर लिया कि मैं विवाह किससे करूंगी, कृष्ण से करूंगी। और हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, प्रभुपा जी बता रहे हैं कि जैसे ही ब्राह्मण रुक्मिणी जी का पत्र लेके कृष्ण के पास पहुंचते हैं, प्रभुपा जी लिख रहे हैं कृष्णा शुक हैंड विद द ब्राह्मण, कृष्ण हाथ मिलाए ब्राह्मण के साथ। कृष्ण कहते हैं जैसे रुक्मिणी जी मेरे से मिलने के लिए तड़प रही है, मैं भी उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कृष्ण के बारे में सुना था और प्रेम करने लगी। कृष्ण रुक्मिणी जी के बारे में सुना था और उनसे प्रेम करने लगे, लेकिन क्या सुना था, उनके गुणों के बारे में सुना था, क्वालिटीज के बारे में। कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन क्या है, सुना है सिर्फ। इसे क्या कहते हैं, पूर्व राग। आजकल भी लोग प्रेम करते हैं ना, और आजकल ये प्रेम का कल्चर तो बढ़ता ही जा रहा है ना, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, बस यही कल्चर बन गया आज का। पहली नजर में देखते ही प्रेम हो जाएगा और पहले झगड़े में वो खत्म हो जाते हैं, है ना। क्योंकि पहले लोग किसी से प्रेम करते थे तो गुण के आधार पर करते थे, क्वालिटीज देखते थे। बड़े लोग जाके ब्राह्मणों के पास जाते थे, कहते थे गुण मिलाने हैं। आजकल तो पहले ब्राह्मण के गुण मिलाने पड़ते हैं, है ना, क्यों, हम देख रहे हैं क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है, है ना। एक विवाह में हमने देखा कि एक पंडित जी आए थे, तो यज्ञ में अग्नि जलाने के लिए माचिस निकालने लगे तो बीड़ी भी निकल गई साथ में। वो बेचारे छुपा रहे हैं बड़ी मुश्किल से कि ये क्या हो गया, ये ब्लंडर कहां से कैसे हो गया ना। तो पहले तो इनसे गुण मिलाने के लिए पहले पंडित जी के गुण देखो, उनमें गुण नहीं है। फिर पुरुष और स्त्री एक दूसरे को सेलेक्ट कैसे करते हैं, लड़का सेलेक्ट करता है सुंदरता के आधार पर ना, उसको चाहिए रूप की रानी, और लड़की डिसाइड करती है पैसों के आधार पर, उसको चाहिए चोरों का राजा। अब अगर ये रूप की राजी चोरों का राजा खेलेंगे तो कितने समय चलेगी ये गेम, थोड़े समय बाद क्या होता है, रूप खत्म हो जाता है, झुर्रियां पड़नी शुरू होती हैं, आंखों के पास, होठों के पास, नाक के पास, फिर झुर्रियां झुर्रियां हो जाती हैं, है ना। छुपा लेते हैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करवा के, खिंचवा कर, लेकिन कितना छुपाएंगे ना? और पैसे के बारे में हम सब जानते हैं कि आज है और कल नहीं है, इसका कुछ नहीं पता होता। लेकिन रुक्मिणी जी का जो प्रेम था वो ऐसा प्रेम नहीं था, दैट वॉज पूर्व राग। मतलब क्या, कृष्ण के बारे में सुना और सुनते ही ये निश्चय कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। रुक्मिणी ने जब बोला कि नहीं नहीं आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ होगा, तो रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिख दिया। प्रेम पत्र में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बता रही है, कह रही घर के अंदर किडनैप मत करना, ब्राह्मण होते हैं, स्त्रियां होती हैं, घर के अंदर युद्ध शुरू हुआ तो ब्राह्मण मारे जाएंगे, स्त्रियां मारी जाएंगी, बच्चे मारे जाएंगे, जब मैं मंदिर जा रही हूंगी ना रस्ते में किडनैप करना, पूरा प्लानिंग बताते हुए उन्होंने रुक्मिणी जी ने मेंशन किया इसमें। अब श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी ने जब कृष्ण को देखा तो राधा रानी कृष्ण को देख के कह रही है कि मैंने एक ब्लैकिश बॉय देखा, ये जो काले रंग का लड़का था इसको देखते ही पता नहीं मेरा मन जैसे इसके साथ चले गया, और मैं अपने घर का काम कैसे संभालूं, क्योंकि मेरे घर के कामों में मेरा दिल लगता ही नहीं है, अभी तक मिले नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन क्या है, पूर्व राग है। और गोपियां भी इस प्रकार से क्या करती थी, राधा रानी को बताती थी ना? कि चंद्रावली जो देवी हैं, कहीं वो कृष्ण को अपने साथ लेना जाए, इसलिए आप पहला अटेम्प्ट कीजिए, आप कृष्ण को लेके जाइए। तो पहले प्रकार का जो विरह है उसे कहते हैं पूर्व राग। दूसरे प्रकार का है मान। मान का मतलब, मान इज एंगर दैट प्रिवेंट्स अ लविंग कपल फ्रॉम मीटिंग। ये एक प्रकार का क्रोध है जो प्रेमी और प्रेमिका को आपस में मिलने से रोकता है। अब एक बार श्री कृष्ण, मतलब श्रीमती राधा रानी जब तैयार होती थी बरसाना में, तो राधा रानी तैयार होकर ललिता देवी से पूछती थी कि ललिता मैं कैसी लग रही हूं, सुंदर लग रही हूं, है ना, जैसे माताओं की आदत होती है पूछना कि सुंदर है या नहीं है, तो वो भी पूछती है ललिता देवी से, ललिता मैं सुंदर लग रही हूं, लेकिन उनकी उनका कंसर्न ये नहीं था कि मैं कितनी सुंदर, मैं कितनी अट्रैक्टिव लग रही हूं, उनका कंसर्न ये था कि कृष्ण जब मुझे देखेंगे कृष्ण को आनंद मिलेगा क्या। और राधा रानी इतनी सज धज के जब कृष्ण के पास जाती हैं और कृष्ण से पूछती है मैं कैसी लग रही हूं, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि आप तो चंद्रमा के समान लग रही हैं, चंदा के समान लग रही हैं। अब देखिए कृष्ण ने तो एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट किया था, है ना, लेकिन राधा रानी से कैसे लेके चलते हैं कि चांद तो बोला है लेकिन चांद में क्या है, दाग है ना चांद में। तो कृष्ण मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है सुंदर तो हूं लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। और सेकंड कंसर्न क्या, राधा रानी की जो अपोजिट पार्टी है दैट इज चंद्रावली पार्टी, तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे चंद्रावली के साथ कंपेयर करें कि चांद के समान लग रही हो। तो इस बात से क्या होती है, राधा रानी नाराज हो जाती है, अपसेट हो जाती है, और फिर कृष्ण राधा रानी के पीछे जाते हैं राधा रानी को मनाने के लिए। और फिर जयदेव गोस्वामी जैसे अपने भजन में लिखते हैं, है ना, स्मरल गरल खंडनम मम श्री रसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, कि कृष्ण राधा रानी के मान को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, राधा रानी के चरणों को अपने सर के ऊपर रखते हैं। बट मान इसमें भी क्या सेपरेशन है, लेकिन क्रोध के कारण नहीं मिलना मुझे। फिर कृष्ण ललिता देवी को अप्रोच करते हैं कि थोड़ा बात करवाओ ना, या राधा रानी को कभी पता लगता है कि कृष्ण विरजा देवी के साथ या चंद्रावली के देवी के साथ किसी निकुंज में है, किसी कुंज में है, तो इस बात पे राधा रानी मान प्रकट करती हैं। तो इस कारण से क्या है, सेपरेशन हो जाता है। पहला सेपरेशन कौन सा था, आप लोग बोल ही नहीं रहे, दोबारा कोशिश कीजिए उत्साह से, पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा है प्रेम वैचित्य। अब प्रेम वैचित्य का मतलब क्या है, प्रेम वैचित्य इज फीलिंग ऑफ सेपरेशन इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ द बिलवड, मतलब भगवान की प्रेजेंस में ही भगवान से विरह होना। जैसे एक बार कृष्ण की गोद में श्रीमती राधा रानी बैठी थी और एक भंवरा आके ना तंग कर रहा था बार 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 राधा रानी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर घूम रहा और इरिटेट कर रहा है। पीछे से मधुमंगल आते हैं, वो उस भंवरे को हटा देते हैं और कहते हैं मधु चले गया, मधुसूदन चले गया। अब राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी हैं और राधा रानी को ऐसा लगता है कि मधुसूदन चले गए मतलब कृष्ण चले गए, जबकि मधुसूदन तो भंवरे के लिए बोला गया था, लेकिन उनको क्या लगता है कि कृष्ण चले गए। और इस बात पर राधा रानी रोना शुरू करती हैं और राधा रानी को अश्रु प्रवाह करते देख कृष्ण रोना शुरू करते हैं और कृष्ण और राधा रानी के अश्रुओं से एक कुंड बन जाता है। भौम वृंदावन में तो हम जानते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड बना था, जब अरिष्टासुर आया था तो उनके कैसे फुटप्रिंट्स को कृष्ण ने प्रेस किया और उसमें फिर सभी नदियों को बुलाया। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो राधा कुंड और श्याम कुंड बनता है वो कृष्ण और राधा रानी के अश्रुओं का बनता है। प्रेम वैचित्य समीप है, गोद में बैठी है, लेकिन फिर भी क्या है, विरह की अनुभूति हो रही है, सेपरेशन की फीलिंग आ रही है। और चौथा है प्रवास। प्रवास का मतलब, प्रवास इज सेपरेशन ड्यू टू लिविंग एंटिटी और लिविंग एट अ डिस्टेंस प्लेस। प्रवास का मतलब विरह की अनुभूति होना जब जिनसे प्रेम करते हैं वो थोड़ा दूर चले गए हैं। मतलब क्या है, जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए थे तो राधा रानी और गोपियां जितनी थी और ब्रजवासी जितने थे वो विरह की अनुभूति कर रहे थे क्योंकि कृष्ण दूर चले गए हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रवास। तो कौन कौन से चार पार्ट्स हैं, पहले क्या है, पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा प्रेम वैचित्य, चौथा प्रवास। यस, तो श्रील प्रभुपाद जी इस कंटेक्स्ट में जब गोस्वामी को कंपेयर करते थे तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जो छह गोस्वामी रहे हैं उनका भी सेम मूड था यही। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोस्वामी ने, हमारे छह गोस्वामी ने या किसी भी गोस्वामी ने कभी ये नहीं बोला आई हैव सीन कृष्णा। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मैंने कृष्ण को देखा, कृष्ण मुझे दिखे वृंदावन में, बट हमारे आचार्य गणों ने कभी ये नहीं बोला। जैसे आजकल तो लोग भजन भी ऐसे बनाते हैं, रत शाम सपने में आए धैया पी गए तरा रा 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 रा। अब सोचिए पूरा दिन ये व्यक्ति अपने ऑफिस में काम करता रहा, घर आकर क्रिकेट मैच देखा इसने, पूरे दिन फजूल का काम किया और इसके रात को सपने में कौन आए, कृष्ण भी आ गए। कृष्ण आए, धैया भी पी गए और तरा रा 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 भी हो गया, है ना। पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी भी हमारे किसी आचार्य ने ये मूड एक्सप्रेस नहीं किया, हमारे आचार्य का यही हमेशा मूड रहा है, मूड इन सेपरेशन। तभी ये जो षट गोस्वामी अष्टकम है उसका एक्सटेंजा इस प्रकार से है, हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुतः। हे श्रीमती राधा रानी, हे नंद सुता, आप कहां हैं।
क्या आप गोवर्धन पर्वत के निकट हैं या यमुना जी के तट पर हैं, कहां पर हैं आप? क्योंकि दे वर सर्चिंग फॉर कृष्णा. कभी उन्होंने ये नहीं बोला हमारे गोस्वामियों ने कि हमें कृष्ण मिल गए हैं. अर्जुन भी जब द्वारका पहुंचे और अर्जुन को पता लगता है कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं, 7 महीने तक अर्जुन उस समय द्वारका में रुकते हैं, 7 months. और 7 महीने के बाद जब अर्जुन पहुंचते हैं वापसी, तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से कृष्ण के बारे में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को हल्का सा आइडिया होगा था, क्योंकि नारद मुनि ने हिंट दे दिया था कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं. तो उनको ये एक ग्लिम्स था, एक आइडिया था कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं. लेकिन युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से जाना चाह रहे थे और अर्जुन इस बात को बता ही नहीं पा रहे कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं. बिकॉज अर्जुन जो थे ही वॉज वेरी ओवरवेल्ड, बहुत अभिभूत हो गए थे इस बात से, क्योंकि जो कृष्ण थे वो उनके प्राण थे. अब देखिए, भक्त कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं. सोचिए अर्जुन के बारे में, जिन्होंने कृष्ण को देखा है, ना केवल कृष्ण को देखा है, उन्होंने कृष्ण को छुआ है. ना केवल छुआ है, कृष्ण के साथ बैठकर हंसे हैं, बातचीत किया, उनके साथ खाया है. ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कृष्ण अप्रकट हो गए, उनके लिए कितना पेन टेकिंग था. श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, कह रहे यस्य क्षणा वियोगेना लोको ही अप्रिय दर्शना उक्तेना रहितो ही एषा मृतक तेना प्रचुयते यथा. कह रहे आई हैव जस्ट लॉस्ट हिम हूज सेपरेशन फॉर अ मोमेंट वुड रेंडर ऑल द यूनिवर्सेस अनफेवरेबल एंड वॉइड. मैंने उनको खो दिया आज, जिनके जिनके बिना एक क्षण भी रहने से पूरा ब्रह्मांड ऐसे लगता है जैसे खाली हो गया. और खाली होने के साथ साथ क्या है, पूरे ब्रह्मांड में अब अमंगल ही हो रहा है, क्योंकि कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण अप्रकट हो गए हैं. और बता रहे कैसे, कृष्ण के बिना मेरा जीना कैसे है, लाइक बॉडीज विदाउट लाइफ. जैसे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो जब शरीर की हालत होती है मृतक, वैसी हालत मेरी हो गई है क्योंकि कृष्ण चले गए हैं. और वैसी हालत इस ब्रह्मांड की हो गई है क्योंकि कृष्ण यहां से चले गए हैं. ही वॉज फीलिंग सो मच सेपरेशन. और जब युधिष्ठिर महाराज भी पूछ रहे हैं तो अर्जुन लमेंट करते जा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे. ना युधिष्ठिर महाराज ठीक से प्रश्न पूछ पा रहे हैं, सीधा बोल पा रहे हैं कि कहीं कृष्ण चले तो नहीं गए, कहीं कृष्ण अप्रकट तो नहीं हो गए. युधिष्ठिर ये सीधा प्रश्न नहीं पूछ पा रहे और अर्जुन खुलकर बता भी नहीं पा रहे कि कृष्ण अप्रकट हो गए, क्योंकि दोनों बहुत ही मतलब एक इतना बड़ा झटका लगा था उनको ना. जैसे कभी 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 क्या होता है कि किसी का कोई परिवार का सदस्य जिससे वो बहुत प्रेम करता है वो चले जाता है, तो लोग रोते हैं, लेकिन रोने के साथ साथ एक उनके मन में होता है कि नहीं नहीं वो नहीं गए, वो हैं अभी यहां पर. दोबारा चेक करते हैं, रिकन्फर्म करते हैं कि सच में आप ठीक कह रहे हो क्या, क्या वो नहीं रहे क्या, दोबारा कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये बात वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. जैसे कभी कभी बस स्टॉप पे खड़े हो ना, तो हमें पता हो कि कोई बस ना 15 मिनट लेट ही आती है, तो 9 बजे की बस है, 9:15 उसने आना है, तो हमें आदत लग चुकी होती है 9:15 की. हम 9:15 पहुंचे एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन पहुंचते हैं तो उस दिन बस 9 बजे आ गई थी, तो बस चले जाती है. तो उस समय ना व्यक्ति पूछता है कि वो जो बस थी चले गई, वो कहते हैं हाँ वो तो चले गई बस. इसको विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे चले गई, नहीं जा सकती. दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि सच में वो जो बस थी वो चले गई है क्या, दूसरा भी व्यक्ति ये बताता लेकिन उसको विश्वास नहीं होता, बिलीव ही नहीं कर पाते इस बात से कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं. इसलिए ना तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रेम के कारण ये प्रश्न पूछ पा रहे थे, ना ही अर्जुन उत्तर दे पा रहे थे, बस वो लेमेंट करते जा रहे थे. आप सोचिए कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ किस लिए, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए. और जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता लगा कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण के बिना इस राज्य का क्या मतलब बनता है, नथिंग. माइनस कृष्णा लाइफ इज हेलिश. बिना कृष्ण के अगर हमारे कोई भी जीवन में से अगर कृष्ण नहीं है तो वो जो जीवन का समय है वो नर्क के समान है. लेकिन अर्जुन इसको बोल नहीं पा रहे, लेकिन ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग कृष्णा, रिमेंबरिंग. ये फीलिंग ऑफ सेपरेशन क्या करती है, ये फायर ऑफ सेपरेशन क्या करती है, हमें प्योरीफाई करती है. जैसे लोहे को अगर अग्नि में डालें तो जल जल के लोहा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है. सोने को अगर अग्नि में डालें तो सोना तप तप के क्या होता है, पवित्र हो जाता है, क्लीन हो जाता है. उसी प्रकार से ये फायर ऑफ सेपरेशन क्या करती है, भक्त को स्ट्रॉन्ग बनाती है और साथ ही क्या करती है, उसे प्योर बनाती है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब वृंदावन से, मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में सुन रहा था, तो प्रभुपाद उसमें कह रहे हैं कि जब कृष्ण अप्रकट हो गए थे वृंदावन से ना, फिर साथ में प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वैसे कृष्ण कभी वृंदावन से अप्रकट नहीं होते। वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं रखते। लेकिन उस समय क्या कर रही थी गोपियां, दे वर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड क्राइंग, वो सोच रही है कृष्ण के बारे में और रोती जा रही है। ना केवल गोपियां, जो कृष्ण के माता पिता हैं वो रोते जा रहे हैं। उद्धव जी जब पहुंचते हैं ब्रज में, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब उनको पता करना होता है कि कहां रहते हैं यशोदा मैया नंद बाबा, तो लोग ना उनको एक 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 छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वाटर बह रहा था वो दिखाते हैं, कहते हैं ये देख लो ये जो नदी सी बह रही है हल्की सी स्ट्रीम है ये, इसको फॉलो करते जाओ आप यशोदा मैया के घर पहुंच जाएंगे, नंद बाबा के घर पहुंच जाएंगे। तो पूछते हैं ये क्या है, कह रहे हैं ये अश्रु है यशोदा मैया नंद बाबा के, जब से कृष्ण अप्रकट हुए हैं गए हैं यहां से, यशोदा मैया नंद बाबा रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। उनके मित्रों का भी यही हाल है और जो गायें हैं वो भी कृष्ण के विरह में रो रही हैं। दरअसल ब्रजवासियों के विरह को, गोपियों के विरह को समझना बहुत मुश्किल है। गोपियां जब कृष्ण के दर्शन करती थी और दर्शन करते करते आईज ब्लिंक करती थी, हम भी दर्शन करते हैं ना भगवान के, राधा रास बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो आईज ब्लिंक होती है कभी कभी, लेकिन हमारे अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आती कि ये आईज ब्लिंक हुई है, मैंने इतनी देर के लिए कृष्ण को नहीं देख पाई या मैं इतनी देर के लिए कृष्ण को नहीं देख पाया, हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आती। गोपियों की जब आंखें झपकती थी तो वो ब्रह्मा जी को गाली देती थी, कह रही इन्होंने सृष्टि तो बनाई है लेकिन ठीक से बनानी ना आई नहीं इनको, आंखें दी अच्छी बात है ये क्या ढक्कन दे दिया ऊपर, मछलियों की आंखें कितनी अच्छी है देखती रहती है हमेशा, हमारे ऊपर ये जो ढक्कन लगा दिया है हम कृष्ण को देखना चाहती हैं, झपकती हैं और ये पलक झपकने का जो समय है ना ये हमें विरह बर्दाश्त नहीं होता। जब गोपियां श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ विहार कर रही होती थी तो अगर कृष्ण और गोपियों के बीच में कोई वृक्ष आ जाता ना, निकलते हुए जा रहे हैं और एक बीच में वृक्ष आ गया, तो जितनी देर में, अब सोचिए कोई चलते हुए जा रहा और बीच में वृक्ष आ जाए कितनी देर लगती है, लेकिन जितनी देर के लिए वृक्ष आता था ये विरह उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, इतना फीलिंग ऑफ सेपरेशन था उनके अंदर। तो सोचिए अगर कृष्ण को ना देख पाना, या फिर यहां पर बता रहे हैं कि गोपियां अपने घरों में छतों पर चढ़ जाती थी कि कृष्ण गायें चराने गए हैं कब आएंगे, जिस दिशा में जाते थे उस तरफ देखती रहती थी। बताया जाता है जब कृष्ण पहली बार बछड़े चराने जा रहे थे, वत्सपाल बने थे, तो जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण को सी ऑफ करते हुए जा रहे हैं। अब कृष्ण के अंदर ना एक क्रेज था कि मैं जा रहा हूं, आज मेरा पहला दिन है, जैसे पहला किसी का नौकरी का दिन हो ना तो उसके अंदर ना एक एक्साइटमेंट होती है, आज मेरा पहला नौकरी का दिन है। तो कृष्ण जा रहे हैं बछड़े चराने के लिए और कृष्ण बछड़े चराते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं यशोदा मैया नंद बाबा सारी गोपियां और जितने भी लोग थे वो उनको सी ऑफ करते करते पीछे तक आ रहे हैं। तो उनको लग रहा था चलो वृंदावन के ना कॉर्नर तक आएंगे, यानी सी ऑफ करते करते जंगल तक पहुंच गए और कृष्ण ये सोच रहे कि मतलब आप जाओ तभी तो हम कुछ खेलेंगे, तो आपकी प्रेजेंस में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नहीं रह पाते थे। और जिस दिशा से कृष्ण गए हैं और जिस दिशा से कृष्ण को आना है उसकी तरफ गोपियां हमेशा देखती रहती थी अपनी छतों पर चढ़ के। अभी कृष्ण दिखते भी नहीं थे, दूर से क्या दिखती थी, एक बादल दिखाई देता था मिट्टी का, जिसे गोधूली वेला कहते हैं। जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायें लेके आ रहे होते थे तो गायों के जो हूफ्स थे जब वो भागती हुई आ रही थी उससे मिट्टी उड़ती थी, तो वो जो एक क्लाउड बनता था और गोपियां दूर से देखती थी कि वो बादल आ गया है, ये गोधूली वेला आ गया है, तो गोपियों को राहत मिलती थी कि कृष्ण आने वाले हैं। ये जो पैंग्स ऑफ सेपरेशन है जिससे हम तड़प रहे हैं अब हमें उससे रिलीफ मिलेगा। तो एक भक्त की भावना भी बिल्कुल इसी प्रकार से होनी चाहिए। किसी भी क्षण अगर डिवोटी कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं कर पाए, कृष्ण के बारे में कथा नहीं कर पाए, कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं कर पाए, तो वो जो समय है उनके लिए ऐसा ही पेन्स गिविंग वाला होना चाहिए कि ये जो क्षण था मेरा इस समय हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाए। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण कैन बी प्रेजेंट मोर एक्यूटली इन सेपरेशन, मतलब कृष्ण विरह में और तीव्रता से कृष्ण क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब तक गोपियों के पास कृष्ण थे एक कृष्ण थे, जब रासलीला के बीच में कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं तो गोपियां क्या करती हैं, तमाल वृक्ष को देखते हैं तो किनका चिंतन होता है, किनका चिंतन होता है, कृष्णा का। जब तुलसी वृक्ष को देखते हैं, तुलसी के पेड़ को देखते हैं तो किनका चिंतन होता है, कृष्णा का। जब काले बादलों को देखते हैं तो किनका चिंतन होता है, कृष्णा का। जहां भी वो देख रही थी उनको किनका चिंतन हो रहा था, कृष्णा का। स्थावरे जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। कहीं पे भी क्यों नहीं देख रही थी, कृष्ण का स्मरण हो रहा था, कृष्ण का। प्रभुपाद जी बता रहे देयरफोर गोपीज आर सो एग्जॉल्टेड, क्योंकि वो हर जगह कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं, कभी भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। इसलिए जो गोपीज की पोजीशन है वो बहुत एग्जॉल्टेड है, एक सिंगल मोमेंट के लिए भी वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो सोचिए जब इसी प्रसंग में आगे आएगा कि जब कृष्ण ऐसे गाय चराने के लिए जाते हैं तो गोपियां बहुत ही चिंता प्रकट करती हैं। उनकी चिंता ये होती है कि कृष्ण के जो चरण है बहुत ही कोमल है और ब्रज भूमि में कई पत्थर हैं, कई कांटे हैं। इस बात को सोचकर गोपियां रोती रहती थी कि कृष्ण के पैरों में कहीं कांटे तो नहीं चुभेंगे, कृष्ण को हर्ट तो नहीं होगा कहीं, ये चिंतन करती रह रही हैं और अपने घर की छत पे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रही हैं। दैट सेपरेशन चैतन्य महाप्रभु ने, यही भाव चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में भी दिखाया है। इसलिए जगन्नाथपुरी का एक नाम है विप्रलंब क्षेत्र। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं एस राधा रानी इज ऑलवेज इन फीलिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ कृष्णा, जैसे राधा रानी हमेशा कृष्ण से विरह के भाव में रहती हैं, सिमिलरली इन द पोजीशन ऑफ राधा रानी लॉर्ड चैतन्य वॉज फीलिंग सेपरेशन ऑफ कृष्णा। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आए हैं वो सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। तभी चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे और साथ में नित्यानंद प्रभु और इत्यादि और वैष्णव हैं, लेकिन जैसे ही चक्र के दर्शन किए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और कैसे भाग रहे हैं, भागते भागते चक्र के दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं, भागते हैं और प्रणाम करते हैं, फिर खड़े होते हैं और प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए रोते हुए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उनकी भावना यह थी कि जगन्नाथ को आलिंगन करना है, गले लगाना है जगन्नाथ को। तो जगन्नाथ जी को आलिंगन करने की भावना से जब पहुंचते हैं वहां पर तो जगन्नाथ का नाम भी नहीं ले पाते, जग्गा जग्गा बोलते हुए बेहोश हो जाते हैं। जितने गार्ड्स आस पर खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड्स, वो लाठियां लेके आते हैं मारने के लिए कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है व्यक्ति, मारो इसको। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत इंटेलिजेंट थे उस समय, वो रोकते हैं सबको, कहते नहीं नहीं, ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये भाव के लक्षण है, महाभाव के लक्षण है, साधारण लक्षण नहीं है। उनकी नाक में जब कॉटन डाला जाता है, रुई डाली जाती है, तो रुई रुई के जो सबसे पतले रेशे हैं जो देखे भी नहीं जा सकते अगर कोई गौर ना करे, बस उन रेशों को हिलता हुआ देखते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगता है कि नहीं नहीं ये जीवित है, मरा नहीं है व्यक्ति अभी तक। और यही स्थिति जो थी वो श्रीमती राधा रानी की ब्रज में थी कि उंगली में पहनने वाली जो अंगूठी होती थी वो उनकी कलाई में आ जाती थी, इतनी कमजोर हो गई थी। अच्छा फिर ऐसा था कि कृष्ण का विरह था तो मर जाते ना, मरे क्यों नहीं, मर जाते ना, फिर मर भी नहीं सकते ना, क्योंकि कृष्ण बोल के गए थे कि मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, बस एक दिन के बाद आ रहा हूं। तो अगर कृष्ण वापस आए और कृष्ण देखा कि हम नहीं रहे तो कृष्ण को कष्ट होगा। इसलिए गोपियां क्या कर रही हैं, ना तो शरीर छोड़ पा रही हैं और ना ही कृष्ण के बिना जी पा रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थितियां जो थी वो साइमल्टेनियसली साथ में चल रही थी। और यही जो मूड है चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में दिखाया। तभी हम जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे तो गंभीरा से भागने की कोशिश करते थे, और जब गंभीरा से बाहर नहीं जा पाते थे तो अपनी चिन्ह को गंभीरा की दीवारों के साथ रगड़ते थे। उनके जो पोर्स थे शरीर, जैसे हम ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेबर करते हैं तो हमारे पोर्स से पसीना निकलता है, चैतन्य महाप्रभु के रोम से खून निकला करता था। जिनको गंभीरा में बंद करके गए हैं वो सिंह द्वार के बाहर जगन्नाथपुरी के बाहर बेहोश मिलते थे, कभी कभी तो उनका कद 14 फुट बड़ा हो जाता था, शरीर के सारे अंग जॉइंट्स जो थे वो खुल जाते थे, और कभी कभी एक कद्दू के समान बिल्कुल छोटे से रोल हो जाते थे। दैट वॉज सेपरेशन, ये सेपरेशन की भावना थी। जो जगन्नाथ जी का रूप जो हम दर्शन करते हैं यहां पर, यही जगन्नाथ जी का रूप है। क्योंकि जैसे भक्त भगवान से विरह की अनुभूति करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों से विरह की अनुभूति करते हैं। द्वारका की जब पटरानियों ने पूछा रोहिणी देवी से कि आप हमें ब्रज की लीलाएं बताइए ना, कृष्ण हमेशा ब्रज का चिंतन करते हैं, तो उन्होंने बोला देखो मैं लीला तो सुनाऊं ब्रज की, ब्रजवासियों की, लेकिन अगर कृष्ण ने सुन लिए तो कृष्ण बलराम तुरंत उस समय ब्रज भाग जाएंगे। बोला फिर कुछ तो करना पड़ेगा। कहते ठीक है हम लीला सुनाते हैं, एक द्वारपाल को खड़ा कर देते हैं। अच्छा द्वारपाल किनको बनाया? सुभद्रा महारानी को। अब जैसे ही रोहिणी देवी जो रानियां उनके सामने कथा कर रही हैं, ब्रज की कथा कर रही हैं, ब्रजवासियों के बारे में चर्चा कर रही हैं, सुभद्रा महारानी इतनी एब्जॉर्ब्ड हो गई उसमें कि वो देखना ही भूल गई कि कृष्ण भी आ गए और बलराम जी भी आ गए। और कृष्ण बलराम ने जब सुनी ब्रज लीला, ब्रजवासियों के बारे में सुना, तो उनके जितने लिम्स थे, अंग थे शरीर के, वो अंदर आ गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई। और ये जो फॉर्म है ये जगन्नाथ का रूप है। नारद मुनि ने जब इस रूप को देखा तो नारद मुनि जोर जोर से बोलने लगे कि अरे ये तो अद्भुत रूप है, ये तो बहुत ही अद्भुत रूप है, ये तो डिवाइन फॉर्म है, बहुत ही, ये तो बहुत अद्भुत रूप है। कृष्ण बलराम बोले कि भैया ये तो इसने गलत समय दर्शन कर लिया, नारद ने कहीं पे भी पहुंच जाता है ये ना। कृष्ण ने बोला नारद देखो एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस रूप के बारे में किसी को वर्णन नहीं करना, जो वरदान चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। नारद मुनि कहते ठीक है जो वरदान मांगूंगा दोगे? कहते हाँ जो वरदान चाहिए दूंगा। नारद मुनि कहते ठीक है, जिस रूप के मैंने दर्शन किए हैं इस रूप के पूरा ब्रह्मांड दर्शन करेगा, यह मैं वरदान चाहता हूं। इसलिए फिर कलयुग में वही कृष्ण जगन्नाथ स्वामी के रूप में इस डिवाइन फॉर्म में आते हैं ताकि इसके दर्शन हर कोई कर सके। तो जिस प्रकार से गोपियां ब्रजवासी कृष्ण के विरह में रहते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण हमेशा ब्रजवासियों की गोपियों के विरह में रहते हैं। लेकिन सबसे खास बात इसमें समझने वाली है कि जो गोपियां विरह में होती हैं तो करती क्या है, क्या करती हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाती हैं? हाँ नहीं, गोपी गीत में बहुत सुंदर बता रहे हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। जब गोपियां इस प्रकार से कृष्ण से विरह की अनुभूति करती हैं तो फिर वो क्या करती हैं? हरि कथा करती हैं, कृष्ण कथा करती हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण माखन चुराया करते थे, किस प्रकार से कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य करते थे, और ड्रामेटिकली करती हैं। एक गोपी कालिया बन जाएंगी, दूसरी गोपी उनके सर पे चढ़ जाएंगी ना, बकासुर की लीला, अघासुर की लीला, ये सारी लीलाएं परफॉर्म करती थी कृष्ण के विरह में। और क्या करती थी? कृष्ण के विरह में कृष्ण का नाम कीर्तन करती थी, कृष्ण का चिंतन करती थी, कृष्ण के लिए अपने कंसर्न को शो करती थी कि पता नहीं कृष्ण कहां होंगे, कृष्ण हमारे बिना एक क्षण नहीं रह पाते थे। हम जानते हैं कि कृष्ण हमारे बिना वहां पर खुश नहीं होंगे, ये हमेशा चिंतन रहता था। और जितनी गोपियां थी, राधा रानी थी, हमेशा कृष्ण 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 ये चिंतन करती रहती थी। लेकिन इस सेपरेशन को कैसे ठीक करती थी? वो कृष्ण कथा करके। एक भक्त भी जब कृष्ण से विरह महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? भक्तों के बीच में आते हैं और कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। वो जब नाम जप करते हैं तो इस भावना से नाम जप करते हैं कि मैंने अपने कई समय, मैंने कई कई जीवन अपना कृष्ण के बिना मैंने गुजारा है, अपना लाइफ टाइम्स तक मैं कृष्ण को चीट करता हुआ आया हूं, धोखा देते आया हूं। मैंने सोचा है कि मैं कृष्ण को हटाकर अपने जीवन से खुश होने की कोशिश करूंगा, लेकिन बस अब और नहीं। बस इसलिए ईगो की, अहंकार की एक परिभाषा यह भी है, ईजीओ, एजिंग गॉड आउट, मतलब क्या है? कृष्ण को किनारे कर देना। और कृष्ण को किनारे करके क्या है? अब खुश होने की कोशिश करना, आनंद लेने की कोशिश करना नहीं। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब यही है कि कृष्ण एब्सेंट नहीं हो सकते, माइनस कृष्णा कोई भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं होता, कोई भी एक्ट नहीं होता। इसलिए डिवोटीज को क्या करना चाहिए? जब भी सेवाएं कर रहे हो, सेवा करते समय ये विचार बनाना चाहिए कि कहीं ये मेरी सेवा माइनस कृष्णा तो नहीं है, ये कृष्ण के आनंद के लिए है, कृष्ण के प्लेजर के लिए है। ये जो हम जपा कर रहे हैं ये कृष्ण के लिए आनंद के लिए है, ये जो हम हरि कथा यहां पर श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कृष्ण के आनंद के लिए है। क्योंकि कृष्ण को आनंद मिलता है जब कृष्ण देखते हैं कि भक्त उनके नाम का जप कर रहे हैं, भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्त सब साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण को आनंद मिलता है। और अभी हम जानते हैं कि जैसे विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है, वर्ल्ड होली नेम वीक, तो कृष्ण को आनंद देने के लिए भक्त तो क्या कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर जपा बढ़ा रहे हैं अपना, है ना। जैसे एक बार गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक में था, तो सब भक्त जपा कर रहे थे, एक भक्त जपा नहीं कर रहे थे, तो महाराज ने पूछा आप जपा नहीं कर रहे, कह रहे महाराज मेरी 16 माला हो गई, बस। क्योंकि लोगों को लगता है कि 16 माला कर लिया बस हो गया, 16 माला परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, बस 16 माला को लांग कर बस एक कदम मैंने भान रखना, 17 नहीं करूंगा मैं, बस 17वीं 16वीं माला भी कर रहे होते ना, तो आखिरी के 3-4 मोती बच्चे होते तो कुंडी पे पहले टांग देते हैं उसको, बस आखिरी में ऐसे माला करते हैं, आखिरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, अब ना तू मेरा मुंह देखियो ना मैं तेरा मुंह देखूंगा। बट चैंटिंग मींस 16 के बाद 17, प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 16 राउंड्स मींस नियोफाइट डिवोटी, प्रभुपाद कहते हैं, है ना, मतलब क्या है 17-18। गुरु महाराज का एक बहुत फेमस कोट है ना, गुरु महाराज हमेशा कहते हैं चैंटिंग 16 राउंड्स इज नॉट द वॉर। लोग दीक्षा लेते हैं कहते हैं हमें 16 माला का जप करना है ना, जैसे एक बार दीक्षा हो रही थी तो एक भक्त आए कहते हैं मैं 4 नियम का पालन करने की कोशिश करूंगा, मैं 16 माला का जप करने की कोशिश करूंगा। एक भक्त साथ में बैठे थे, उन्होंने माइक छीन लिया, कह रहे कोशिश नहीं करनी करना है, लेकिन गुरु महाराज क्या बताते हैं, महाराज कहते हैं कि चैंटिंग 16 राउंड्स इज नॉट द वॉ, अटेंटिवली चैंटिंग 16 राउंड्स इज द वॉ। 16 माला जप करना ये वॉ नहीं है हमारा, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना ये वॉ है। हमने गुरु महाराज से एक बार रूम में पहुंचा था, ब्रह्मचारी सब एक बार पूछे थे महाराज ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब क्या होता है, महाराज ने बोला ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब है जप के समय सिर्फ जप करना और कुछ नहीं करना। अगर हमारे आचार्यों को पता होता ना कि हम जप करते समय जो एक उंगली बाहर रह गई है इससे मोबाइल चलाएंगे, तो इस एक उंगली को भी वो अंदर रखने के लिए क्या गए होते, उनको नहीं पता था कि एंड्रॉइड फोन चलाएंगे इस एक उंगली से, नहीं नहीं, लेकिन जप के समय सिर्फ जपा, गुरु महाराज बता रहे और कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ जपा। थॉट्स जाएंगे बहुत सारी जगह लेकिन सिर्फ जपा, सेवा के भी थॉट्स आएंगे लेकिन सिर्फ जपा। परम पूजनीय राधना स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जैसे डीटी वर्शिप करना भी सेवा है और प्रसाद पाना भी सेवा है, दोनों सेवा ही तो है, लेकिन डीटी वर्शिप करते समय प्रसाद पाना सेवा होगी नहीं, तो दो सेवाएं मिक्स नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जप करना भी सेवा है और जो हम सेवाएं कर रहे हैं ये भी सेवा है, लेकिन जब करते समय सेवा के बारे में केवल सोचते रहना और कुछ चिंता नहीं करना, ध्यान से सुनना नहीं, ये सेवा नहीं है। तो क्या क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रसाद बनाया जाता है, माताएं घर पे बनाती हैं, मंदिर में भक्त प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद बनाते समय दो चीजों का ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब कितने भक्त हैं, अगर पता लगता है कि 20 भक्त कहीं से आ रहे हैं, दिल्ली से 20 भक्त पहुंचे हैं ना, तो टेंपल कमांडर पहले से बता देंगे कि दिल्ली से 20 भक्त आ रहे हैं, आज इतना प्रसाद है इससे 20 की संख्या बढ़ा दो। क्वांटिटी का ध्यान रखना जरूरी है कि कम ना पड़े, लेकिन अच्छा क्वांटिटी क्वांटिटी अगर हो और क्वालिटी ना हो तो चलेगा क्या, नहीं, क्वालिटी भी होनी चाहिए, स्वाद भी तो होना चाहिए। तो जैसे कुकिंग करते समय हम देखते हैं क्वांटिटी भी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसी समय जपा करते समय भी क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी राउंड्स भी होने चाहिए। इसलिए परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं इफ यू वांट टू बी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन चैंट योर राउंड सीरियसली। अगर कृष्ण भावना में इतने गंभीर होना चाहते हो तो गंभीरता पूर्वक जप करो। तो हमारे मंदिर में एक बार हनुमान प्रेषक महाराज जी आए थे, तो महाराज से पूछा, एक्चुअली बहुत खुश आए महाराज, महाराज से पूछा महाराज आप इतने खुश कैसे, मतलब क्या हुआ ऐसा, क्योंकि हम लोग काफी घंटों से प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज की। तो महाराज कहते हैं फ्लाइट वॉज 3 आवर्स लेट, आई चैंटेड 3 राउंड्स 3 आवर्स एक्स्ट्रा। जो फ्लाइट थी 3 घंटे लेट आई, मैंने 3 घंटे अधिक जप किया, आई एम वेरी हैप्पी। महाराज से पूछा कि महाराज आप इतना कंसिस्टेंटली आप भक्ति में कर रहे हैं, इसका कोई सीक्रेट बताइए ना। महाराज ने बोला फिनिश योर राउंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी से हो जल्दी हो सके हमें अपने जप की संख्या को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बात का जो जप होता है उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड कम होने लग जाता है, और जब जपा का क्वालिटी स्टैंडर्ड कम होता है तो फिर हर चीज का क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा कम होना शुरू हो जाता है, फिर सर्विस का क्वालिटी स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा, हरि कथा श्रवण करने का भी क्वालिटी स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि जपा हमें क्या करता है, एक इंस्पिरेशन देता है। ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, कृष्ण की ओर बढ़ने में हम जो ये जपा है हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक है ना। तो इसलिए सचिनंदन स्वामी महाराज जी भी इस कंटेक्स्ट में बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, और महाराज जी विशेष रूप से इसमें बताते हैं कि जो कृष्ण नाम है ना, ये एक एरो की तरह है, एक बाण के समान है, जिस बाण से क्या कर सकते हैं हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो बाण है, अगर इसका निशाना जो है वो गलत लगेगा तो जो सारा जो हमारा मिशन है, जो सब कर रहे हैं, हम सब फेल हो जाएगा। हमारी सारी सर्विसेज, हम जो भी कर रहे हैं कार्य भक्ति में, भक्तों के बीच में आके, इस सभी के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारा नाम जपा, हमारा कीर्तन बहुत अच्छा हो। इसलिए ये जो पॉइंट है, इसलिए इसमें हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और ये विश्व हरिनाम सप्ताह जो है इसी पर्पज से मनाया जा रहा है कि सभी डिवोटीज एक साथ मिलकर आए। जैसे मैंने सुना है कि जुहू में भी 25 तारीख को नाम संकीर्तन है बहुत बड़ा, इज इट राइट 25th टुमारो ओके ना। तो इससे 25 तारीख को मतलब कल एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड संकीर्तन निकाला जा रहा है यहाँ पर ना। तो ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे कंपैशनेट ना, चैतन्य महाप्रभु जब शिवास आंगन में बैठ के जपा क्या करते थे, भक्तों के साथ कीर्तन क्या करते थे, तो उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, बाकियों के लिए क्या ना। तो उन्होंने शिवास आंगन के जो किवाड़ थे वो खोल दिए दरवाजे, और ये नाम संकीर्तन ये लीला प्रारंभ हुई ना? तो आज का जो श्लोक है ये बहुत ही शिक्षा प्रद है, और विशेष रूप से हम भक्त इससे यही सीख सकते हैं कि कृष्ण के विरह के बिना हमारे लिए एक क्षण भी जो जीना है वो एक्चुअली नरक से भी जीने से बदतर है। इसलिए लाइफ में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हम कार्य क्यों ना करें, चाहे हम नहाएं, चाहे हम किससे बात करें, चाहे हम डीटी वर्शिप करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, लेकिन उसका पर्पस एक होना चाहिए कि मेरे इस कार्य से कृष्ण को आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं अपनी बुक्स में, प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक भक्त का ये लक्ष्य रहता है कि मेरे इस एक्ट से, मेरे इस कार्य से कृष्ण के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हम भक्त अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं, और ऐसा चेक करते हुए हम कृष्ण भावनामृत में, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इतना ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, तो प्लीज अगर कोई कुछ करेक्ट करना चाहें या गाइड करना चाहें जहाँ पे मिस्टेक मैंने की हो, तो प्लीज दे कैन। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, माइक है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, गोपियों को तो ये पता था कि श्री कृष्ण जो है मथुरा में है, और गोपियां ऐसे भी तो मथुरा में दही मक्खन दूध घी बेचने के लिए जाती ही थी, है ना? तो क्यों नहीं वहां जाके मिलते थे लोग, वो तो आसानी से मिल सकते थे ना वहां जाने पर। इतना विरह, इतना कष्ट सहने से अच्छा था वहां जाके भेंट करें।
थैंक यू प्रभु जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मथुरा पास में तो था ना। ये प्रश्न मेरे भी एक बार दिमाग में आया था कि जब दूध दही बेचने जाती थी वहां पर तो कृष्ण से मिलती हुई आ जाती ना। यस, तो फिर क्या कारण था? एक्चुअली हमारे शास्त्र तो इस बात को लेके बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि चैतन्य महापूजा में भक्ति देने के लिए आए हैं वो द्वारकाधीश कृष्ण की भक्ति देने के लिए नहीं आए जिसमें ऐश्वर्य है, वे मथुराधीश कृष्ण की भक्ति देने के लिए नहीं आए जिसमें ऐश्वर्य और मधुरे मिक्स है, वह केवल कृष्ण भक्ति जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति है वो देने के लिए आए हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। तो गोपियां कृष्ण से मथुरा में मिल तो सकती थी लेकिन उनको वो आनंद नहीं आता क्योंकि वहां पर माधुर्य नहीं था, वहां पर ऐश्वर्य मिक्स हो गया था माधुर्य के साथ। गोपियों ने दर्शन किए तो थे कृष्ण के कुरुक्षेत्र में, लेकिन श्रीमती राधा रानी कह रही है आप वही कृष्ण है, मैं वही राधा हूं, लेकिन हम मुझे वो भाव नहीं आ रहा जो ब्रज में आता था। चलो हमारे साथ ब्रज में वापिस चलो, आपका मोर मुकुट कहां है, आपकी बंशी कहां पर है, आपकी वैजंती माला कहां पर है, चलो हम आपको इस रथ पर बैठे हुए हम आपको ब्रज लेके चलते हैं। तो गोपियां कृष्ण को हमेशा ब्रज भाव में देखना चाहती थी, किसी राजा के रूप में नहीं देख सकती थी। तो ये अनुभूति उनको कुरुक्षेत्र में भी हुई थी, इसलिए ये उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना था जो उनको सेटिस्फेक्शन वृंदावन में ब्रज में मिलना था, इसलिए गोपियों ने कभी इस ऑप्शन को चूज नहीं किया।
मैं कौन कमेंट, जैसे पहाड़ी के ऊपर समतल जमीन होती है और वहां पेड़ हरे भरे रहते हैं, क्योंकि वो अपने मूल के द्वारा पानी को शोषण करते हैं। वहां पानी है वो हम पी नहीं सकते हैं। वही पानी जब झरने से बह के आता है, नदी में आता है, तालाब में आता है, कुआं में आता है, तब वो पानी वाटर टब से हमारे घर आता है, तो वो पानी हम पी सकते हैं। तो वास्तव में वो जो पानी जमीन के अंदर है और जो पानी हम पीते हैं नल से, वो पानी एक ही है। इसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत विद्वान नहीं भी है और अनपढ़ गवार भी है, इतना योग्यता भी नहीं है, तो प्रभु अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में साक्षात विराजमान है उनमें, और जो ग्वाल बाल सखाओं के साथ लीला किए हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये मंदिर में लोग बोलते हैं भगवान सब जगह है, लेकिन उनके लिए है जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। हम लोग का कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं है, तो हम लोग जन सामान्य के लिए, सबके कल्याण के लिए श्री प्रभुपाद जी कार्य किए हैं कि उन्होंने राधा कृष्ण का अर्चा विग्रह का मंदिर स्थापन करके हम लोग को सेवा का अवसर दिया है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जनताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।